Yo soy una de las tres. क्या बताया? नए नए पॉइंट निकलते हैं, माना विचार सागर मंथन हो रहा है। शीघ्र ही कहाँ होता है, शिव जयंती होती है माघ मास में और श्रावण मास में होती है कृष्ण जयंती, तो शीघ्र थोड़ा ही होता है। शिव जयंती है बाप की जयंती और कृष्ण जयंती है बच्चे की जयंती, तो तुरंत होने की तो बात ही नहीं। बाप पैदा होता ही थोड़ा ही बच्चा पैदा कर देता है, हैं? बाप प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले और जन्म लेने के बाद थोड़ा परिपक्व उम्र बने तो पकती हुई एज के बाद फिर बच्चे का जन्म हो सकता है। हाँ जी, ये कुछ और आगे कहना था ना, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है, फिर क्या है? बताती थी अभी 76 बाप का जन्मदिन माना गया, तो 98 बच्चे का जन्मदिन। लेकिन ये भी पक्की प्रत्यक्षता नहीं है, पक्की प्रत्यक्षता तब हो जब सारी दुनिया के सामने बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता हो जाए। इसलिए दिखाते हैं कि रात्रि में ही बाप का जन्म और रात्रि में ही बच्चे का जन्म, दोनों का जन्म रात्रि के 12 बजे दिखाते हैं। अभी माया पूरे जोश खरोश से बच्चों का एग्जाम नहीं लिया है, अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है। जब फाइनल एग्जाम होगा तो रिजल्ट आउट होगा, और फाइनल एग्जाम में कितने पास होंगे? 8 पास होंगे और बाकी सब उस 8 उन 8 के मुकाबले फेल हो जाएंगे, तो पूरा ही अंधेरा हो जाएगा या उजेला रहेगा, हैं? पूरा ही अंधेरा हो जाएगा, माना बाप गुप्त हो जाएगा सबकी नजरों से। और क्या
मस्जिद में
अंदर मस्जिद में कन्या माताओं को नहीं जाने देते, उन्होंने मस्जिद नाम क्यों धरा है? है वो फाउंडेशन ही ऐसी के द्वारा पड़ता है जो मिस होती है, लेकिन जिद करने वाली मिस होती है। वो कहती है कि मेरे सिवाय और यहाँ कोई नहीं प्रवेश करेगा, क्या ये स्थान सिर्फ मेरा है, मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ? मिस्जिद फीमेल है या मेल है?
फीमेल
है। तो फीमेल जहाँ है वो जिद करके बैठी हुई है कि मैं ही यहाँ की अधिकारिणी हूँ पूजा लेने की, मेरे अलावा और कोई पूजा यहाँ नहीं ले सकता। तो कोई औरतों को घुसने नहीं देती। बहुत चुस्त चालाक है।
बाबा आर्य समाज को दायन तरफ दिखाए ना बाबा
है,
दायन तरफ दिखाए
नहीं हो रहा।
तो फिर भी वो पंच विकारों में एक विकार का जो मुख्य होता हो
है
तो उसको भी बायां तरफ दिखाना पड़ता है
ना? नहीं, बाई ओर दिखाना चाहिए। ये आर्य समाजी जो होते हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, सब धर्मों से उनकी आस्था उखड़ जाती है। उसका कारण यह है कि जो भी धर्म द्वापर युग से शुरू हुआ ये इतने अवसरवादी है कि उस नए धर्म में तुरंत घुस जाते हैं। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम धर्म आया तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हर धर्म से कन्वर्ट होते हुए आते हैं, इसलिए किसी धर्म में इनको सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये नियम है स्वधर्म निधर्म से पर धर्म हो दुखदाई, यानी हर धर्म में दुख मिलता है, इसलिए सब धर्मों से इनकी श्रद्धा हट जाती है। आखिरी में ये फिर भारत में आते हैं। जब भगवान भारत में आते हैं तो उस समय से थोड़ा समय पूर्व महर्षि दयानंद आते हैं और सब धर्म वालों को निमंत्रण देते हैं कि कोई भी आकर के भारत में हिंदू बन जाए, हम उसे अपना लेंगे। तो दूसरे दूसरे धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होती रही है, दुख प्राप्त करती रही है, उन्हें मौका मिलता है। पहले तो कभी हिंदुओं को मौका ही नहीं मिला, जो एक बार कन्वर्ट हो गए कन्वर्ट हो गए, उनको कभी भी भारतवासियों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई। और लास्ट में महर्षि दयानंद आकर के सब धर्म वालों को निमंत्रण दे देते हैं कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है। तो जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, धर्म पिता के पीछे पीछे परम धाम से उतरने वाली आत्माएं, वो तो आने वाली नहीं। कौन आते हैं? जो हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे वही कन्वर्ट होने वाले फिर भारतवर्ष में आकर के जन्म लेते हैं और वो आर्य समाज बनते हैं। इसलिए ये वास्तव में वाम मार्गी है, क्यों उन्होंने अनेक जन्म कहाँ बिताए हैं?
दूसरे दूसरे धर्मों में
वाम मार्ग में जन्म लेते हुए बिताए, आखिरी जन्म में भारत में आ जाते हैं। इसलिए इनको किसी धर्म के ऊपर आस्था नहीं है, इसलिए जो राज्य स्थापन होता है भारतवर्ष में आखिरी धर्म का, भारत का आखिरी धर्म कौन सा हुआ? आर्य समाज। उसमें इन्होंने ये नियम बना दिया धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, तुम कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो, सिख हो, लेकिन हमको वोट देते रहो, हमारी जनसंख्या बढ़ाते रहो, बस हमें धर्म वर्म से कुछ लेना देना नहीं। तो बाप क्या कहते हैं और ये आर्य समाज क्या कहते हैं? बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, और ये क्या कहते हैं? हमें धर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। तो फिर इनका राज्य कैसा चलता है? उस राज्य में कोई माइट होती है, ताकत होती है? नहीं होती। राज्य का छोटे से वर्ग का आदमी भी डकैत बन के और ऊंची गद्दी पर बैठने वाले रक्षा मंत्री की लड़की को तुझने अब कर ली था। आज पुलिस की सत्ता और मिलिट्री की सत्ता कुछ नहीं कर पाती। तो जब राजाओं का ये हाल होता है कि उस धर्म में कोई ताकत ही नहीं, तो प्रजावर्ग का क्या हाल होता होगा? इसलिए आर्य समाज ही वास्तव में दाई ओर के धर्म के नहीं है, कहां के हैं? ये पक्के वाम मार्गी है, अर्धनास्तिक है, आधे नास्तिक, क्योंकि ये भगवान को तो मानते हैं निराकार को, लेकिन साकार देवी देवताओं को नहीं मानते, और बिना देवता के तो भगवान ही नहीं होता। भगवान तो आता ही है बड़े से बड़े देवता में, और आता ही है देवता धर्म की स्थापना करने। इसलिए इनको कौरव संप्रदाय कहा गया। कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। ये कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, और पांच सितारा होटलों में बहुत गंध मचाए रहते हैं, और
बाबा दो दो कृष्ण का जन्म हो सकता है क्या? क्योंकि दो दो कृष्ण का जन्म हो सकता है क्या?
दो दो कृष्ण?
हाँ बाबा, क्योंकि ऐसे में कृष्ण का प्रत्यक्ष हुई
है
सन 98 में, कृष्ण का प्रत्यक्ष हुई ना।
वो तो बेहद की प्रत्यक्षता है, हर तक के कृष्ण शरीर का जन्म लेने वाले कृष्ण की प्रत्यक्षता थोड़ा ही है, वो तो बुद्ध रूपी पेट से जन्म लेने वाला है या स्थूल पेट से जन्म लेने वाला कृष्ण है, वो कौन सा कृष्ण है? शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो कृष्ण है, या शास्त्रों में जिसका गायन ही नहीं है, जो बाबा ने बताया कृष्ण सतयुग में होता है पहले जन्म में पहला पत्ता, वो कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण अलग, और सतयुग का फाउंडेशन डालने वाला पहला पत्ता रूपी कृष्ण अलग होता है, तो दो दो कृष्ण तो होंगे ना। कृष्ण के साथ कंसी जरासिंधी भी दिखाए हैं, मुरली में बोला है, तो मुरली की बात सत्य होगी या असत्य होगी? बाबा तो कहते हैं शास्त्रों में सब भूसा भरा पड़ा, तो ये तो शास्त्रों की बात है कि कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी है, तो शास्त्रों की बात है, लेकिन भगवान ने अपने मुख से बोली है, इसलिए जरूर इसमें कोई रहस्य समाया हुआ है। क्या रहस्य समाया हुआ है? कि जहां संगमयुगी दुनिया में बेहद का कृष्ण होता है, और वहीं वहां पर कंसी और जरासंधी भी मौजूद होते हैं, और जो बच्चे जन्म लेने के बाद भक्ति करने के बाद अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, तो वो ईश्वरीय सेवा का अपने जिंदा रहने का कुछ तो प्रमाण भेजते रहे। अगर प्रूफ नहीं भेजते हैं तो बाबा समझते हैं ये बच्चा मर गया, चिट्ठी भेजे, ईमेल भेजे, या कम से कम फोन करते रहे, तो बाबा को विश्वास हो जाए कि बच्चा अभी जिंदा है, याद करता है, नहीं तो माया खा गई है। तो हेड ऑफिस में ही करना होगा। अरे प्रधानमंत्री कहाँ होगा? अपने हेड ऑफिस से कनेक्टेड होगा, और दुनिया में कहीं भी घूमता रहे, लेकिन हेड ऑफिस से कनेक्शन जुड़ेगा तो उसको संदेश तो मिलेगा ही।
मारता है
हाँ जी,
दो तीन सब करके उल्टा रखता है।
हाँ जी हाँ जी,
रहस्य क्या?
भीम माना भयंकर, और इतना भयंकर है कि वो 100 कौरवों को अकेला मारता है। महाभारत के प्रसिद्ध है 100 कौरव और 100 कीचक। कीचक मुरली में बताया है गंदे डर्टी ब्रूट्स, जिन्हें दुनिया में जार कर्म करने के लिए और कोई मिलता ही नहीं। ईश्वरीय सेवा में लगी रहने वाली कन्याएं ही मिलती हैं, उनके पीछे पड़ते हैं जो ईश्वरीय सेवा के लिए है निमित्त, ऐसे गंदे डर्टी ब्रूट्स। तो जो भीम है इतना भयंकर रूप धारण करता है कि अकेले ही 100 कीचकों का वध करता है, अकेले ही 100 कौरवों का वध करता है। उनमें एक है जरासिंधी, जरा माने पुराने और सिंधी माने सिंधी। ब्राह्मणों की दुनिया में ये जरासिंधी किधर है, उनका गढ़ कहाँ है? उनका गढ़ है, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, आपस में ही झगड़ पड़ते हैं। तो उसको दिखा दिया, टांगे फाड़ के रख दी। और
लक्ष्मी और नारायण के लक्ष्मी का पैर के लिए राधा और नारायण का लाल भी कर सकते।
क्या जी? पेशगीर, नारायण का पेशगीर तो नारायण क्रांतिकारी होगा और लक्ष्मी हरियाली लाने वाली होगी। जो क्रांतिकारी होगा वो खूनी क्रांति करेगा, सारी दुनिया में खूनी खून खराबा हो जाएगा। क्या मरुआ मौत मनु का शिकार, सारी दुनिया में हाय हाय मची होगी, खून की नदियां बह रही होंगी और उनको शिकार मिल रहा होगा। अच्छे ससुरे मर रहे, मरने दो इनको, बहुत खुशी हो रही है, इनको ऐसे ही मरना चाहिए। उनको खुशी होती है, मिरुआ मौत मनु का शिकार, तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले। उनको मिलता है लाल पेशगीर, खूनी क्रांति करने वाला, और वो है वैष्णो देवी हरियाली लाने वाली, माने नई दुनिया जो भी स्थापन होगी यमुना के कंठे पर उसको लाने वाली होगी। क्या ब्रह्मा को तो कौन सा रंग दिखाया जाता है? हरा रंग दिखाया जाता है। कहते हैं सावन के अंधे को, जो सावन में अंधा होता है, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है और उस महीने में कोई अंधा हो जाए तो कहते हैं ये कहावत कि सावन के महीने में सावन के अंधे को सारी जिंदगी हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। राम राज्य आया के आया, मैं जाके कृष्ण बनूंगा, ये होगा वो होगा, सत्युग में महल होंगे, कितना सुख होगा, बस हरियाली की दुनिया में रहता है। तो अंत मते सुगते क्या होगी? ब्रह्मा जिस सेकंड ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा तो हरियाली में जाएगा या खूनी नाहक खेल में जाएगा? हरियाली में जाके जन्म लेता है। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं तो नरक में क्या होगा? खून खराबा हो रहा होगा, और उस खून खराबे के बीच में स्वर्ग का वर्षा हरियाली की दुनिया में वो कृष्ण जन्म लेगा। यहां भी क्या किया उस बच्चे ने, जब तक जीवन में रहकर पुरुषार्थ किया चैन की बंसी बजा के पुरुषार्थ किया या जीवन में कोई भागदौड़ परेशानी थी? चैन की बंसी बजाई तो अंतर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये पूछ रही है। अच्छा अच्छा
आदमी जब सुख में रहता है,
है?
आदमी जब सुख में रहता है भगवान को नहीं याद करता।
बराबर।
और आदमी दुख में रहता है भगवान को याद करता, ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? जब दुख होता है तभी तो याद करेगा। जो सुखी है तो भगवान को, भगवान की क्या दरकार? भगवान दुख में आता है कि सुख में आता है, सतयुग में आता है या कलयुग में आता है? सतयुग में तो आता ही नहीं, तुम बुला फिर आएगा ही नहीं, न तुम बुलाओगे।
बाबा ये सीरीज में बोला है, जो एडवांस पार्टियों की वजह से दिल्ली में जो बड़ा प्रोग्राम किया था, मेगा प्रोग्राम बीकेएस ने, वो एडवांस पार्टी भी सेवा करने के लिए परमिशन ले लिया, इसलिए वो रुका गया। इसलिए ऐसे करने से वो भी बाबा भगवान का संदेश देता है ना।
कौन?
वाले
मेगा प्रोग्राम करने वाले? अच्छा, वो संदेश मजबूरी में दे रहे हैं?
या प्रश्न सुनिए, इसलिए वो भी हमको पाप लगता है ना, वो ठीक नहीं है ना, ये माता जी कहते
हैं। अच्छा, आप नहीं कहते हैं। जो भी मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं या जो भी सर्विस हो रही है बीकेएस में, वो मजबूरी से हो रही है या अंदर की इच्छा से हो रही है? तो जो मजबूरी से काम होता है उसका रिजल्ट क्या होगा? मजबूरी से काम होगा तो अपनी धन संपत्ति तो लगाई नहीं जाएगी कि अपनी बैंक में से बैलेंस निकाला और सेवा की, क्या किया जाएगा? दूसरों से संपत्ति खींच खींच करके सेवा में लगाया जाएगा। तो जब खींच खींच करके सेवा में लगाया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो सेवा तमो प्रधान हुई या सतो प्रधान हुई? तमो प्रधान सेवा से जो भी सेवा होगी, चलो संदेश मिलने की सेवा हुई, वो सतयुग में फलीभूत होगी, त्रेता में फलीभूत होगी, द्वापर में फलीभूत होगी या कलयुग में जाके फलीभूत होगी? है, कलयुग में जाके फलीभूत होगी। तो वो सेवा करना अच्छा है।
सेवा को तोड़ना हुआ ना,
वो जो कलयुग में, जो कलयुग स्थापन करने वाली सेवा हो रही है, वो सेवा करना अच्छा है, उसमें सहयोग देना अच्छा हुआ ना, है? जिसमें देहधारी गुरुओं की प्रत्यक्षता हो रही हो भगवान के रूप में, ये देखो त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष हो रही है, त्रिमूर्ति कोई अलग से देवताएं नहीं है, हम बच्चे ही तीन मूर्तियों का पाठ बजाते हैं, उनकी बुद्धि में क्या बैठा है? उनकी बुद्धि में बैठा है ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई अलग अलग नहीं होते। हम बच्चे ही ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं, हम बच्चे ही विष्णु का पाठ बजाते हैं, हम बच्चे ही शंकर का पाठ बजाते हैं। तुम्हें नहीं मालूम हो तो देखो ये चित्र। तो हजारों लाखों की तादाद में पोस्टर बनाए जाते हैं, उसमें देहधारी धर्मगुरु जो शिवो हम बन के बैठ जाते हैं, उन त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है या वास्तव त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होती है? इसकी प्रत्यक्षता होती है, सेवो हम कहने वालों की, बन के बैठने वालों की प्रत्यक्षता होती है। ये तो अनर्थ हो गया, सेवा हो रही है या डिसर्विस हो रही है? ब्राह्मण बच्चों की असली सर्विस क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना या देहधारी गुरुओं को प्रत्यक्ष करना? बाप को प्रत्यक्ष करना, ये असली सेवा है।
उनकी प्रोग्राम में जाकर सेवा करने के बदले,
हाँ,
हम ही एडवांस पार्टी वाले मिलकर के ऐसा बड़ा प्रोग्राम करके हमें ये कर सकते हैं सबको बुला के।
हमको कोई प्रोग्राम करने की दरकार नहीं है, हम तो राजा ही स्थापन करने वाले हैं, हम संदेश देकर के प्रजा बनाने वाले नहीं है, प्रजा तो अपने आप पीछे पीछे बन जाती है, मेहनत कायम है, राजा क्वालिटी बनाने में मेहनत है। राजा बनाने के लिए एक एक आत्मा को बैठ करके समझाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संदेश देना, फिर समझाना, फिर उसके बाद भट्टी कराना, भर्ती कराने के बाद रेगुलर क्लासेस कराना मेहनत है। और
बाबा ने पंचवर्षीय योजना बना के
हाँ जी
अपने सीट पर सेट हो गए।
बाबा पंचवर्षीय योजना बना के सीट पे सेट हो गए।
76 से लेकर 81 82
तक की जो पंचवर्षीय योजना है हाँ वो पूरी हो गई।
वो योजना क्या है?
योजना है कि मतलब बैगर टू प्रिंस बनना। बैगर था, बैगर माने जिसको कोई घरबार घरबार नहीं था, गलियों गलियों डोलता फिरता होगा क्या? जिसको घरबार नहीं होगा वो कहाँ रहेगा? रोडपति होगा, करोड़पति होगा, और रोड पर रहता होगा होटलों पे दुकान के सामने होटले होते हैं ना, उनमें रहता होगा। फिर उस बैगर को क्या बनाते हैं? प्रिंस बनाते हैं। कोई ऐसा ठिकाने पे बैठा देते हैं कि सब आकर के उसकी चिरौरी करें, वो कहीं नहीं जाता क्या? उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। सब आकर के उसकी पूजा करते हैं, वो किसी की पूजा नहीं करता। जो राजा का प्रिंस बच्चा होता है वो दूसरों के सामने लेने जाता है नहीं लेने जाता, वो तो प्रिंस बन गया। भले राजा नहीं बना, राजा डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन प्रिंस हो गया प्रैक्टिकल में। उसको किसी के सामने झोली फैलाने की दरकार नहीं है, दर दर भटकने की दरकार नहीं है। ये मतलब हुआ। और दोबारा फिर वो पंचवर्षीय प्लान बनाने की भी दरकार नहीं है। वो गवर्नमेंट क्या करती है? एक बार पंचवर्षीय प्लान बनाया, फिर दोबारा बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, वो बनता ही रहता है। पंचवर्षीय प्लान कभी पूरा होता ही नहीं। और बाप सिर्फ एक ही बार पंचवर्षीय प्लान बनाते हैं और वो पंचवर्षीय योजना सफल हो जाती है। बैगर टू प्रिंस। डिवाइड किया गया है, जो समूचा एक सागर है सारी दुनिया में, उसको सात सागर के रूप में दिखाया गया है। हाँ,
उन सबको समाने वाला एक ही है।
हाँ,
वो कौन सा सागर है?
वो तो सात सागरों को समाने वाला एक ही सागर है। सात सागर जो है जो सारे मिलकर के सारी पृथ्वी को डुबा देंगे, एक सागर बन जाएगा ना। वो कौन सा सागर होगा, कहाँ होगा? हिंदुस्तान के पास होगा या कोई पाकिस्तान वो दूसरे देश के पास होगा? हिंदुस्तान होगा। तो हिंद महासागर के पास आकर के सब सारे ही सागर इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए वो एक ही सागर है, सात सागर नहीं है। लेकिन जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो ये सात सागर भी हो जाते हैं, जो सात महाद्वीपों से बट जाते हैं। सात महाद्वीप, सात सागर माने सात नारायण, जो अलग अलग धर्मों में दूसरे दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए सागर भी डिवाइड हो जाता है। अभी सारे सागर मिलकर के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। अभी तो लड़ाई होती है, तुम हमारे सागर में क्यों आ गए? दूसरे देश की पनडुब्बी अगर दूसरे देश के सागर में चली जाए बिना परमिशन के तो उसको उड़ा देंगे, फिर ये डर नहीं रहेगा। जब एक ही सागर बन जाएगा तो सारी धरती, सारा आकाश और सारा सागर हमारा हो जाएगा। उसे कहते हैं अद्वैतवाद। न दो सागर होंगे, न दो महाद्वीप होंगे, आसमान भी बटा हुआ नहीं होगा। और अभी अभी द्वैतवाद है, दो देशों के बीच में आसमान भी बट जाता है। हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन क्यों आया? बिना परमिशन के। हमारे सागर में तुम्हारा जहाज क्यों आया पानी का?
एक कैसे में बाबा ने कहा है कि 550 करोड़ जितनी भी मनुष्य आत्मा है सबको बाप के सामने नतमस्तक होना है, मतलब सबको बाप के सामने बुद्धि झुकाना है,
है?
और दूसरी तरफ बाबा ने मुरली में कहा है, कैसेट में कहा है कि बाप के ऊपर जब कलंक लगेगा तो बाप का भुजा वो भी नहीं रहेगा, ऐसा तो कौन सा क्रम में ये चलता है बाबा?
पहले कलंक लगते हैं और कलंक लगने के बाद फिर बाद में निष्कलंक बन जाते हैं तो सब झुक जाते हैं। सच्चाई तुरंत नहीं प्रत्यक्ष होती, सच्चाई को प्रत्यक्ष होने में देर है, अंधेर नहीं है। सत्य की नैया हिलती है डुलती है, जब नैया या जहाज ज्यादा डावाडोल होता है तो छोटी छोटी नवैयों का आसरा लेकर के लोग कूद पड़ते हैं उन्हीं पर, ये सारा जहाज तो डूबने वाला है, निश्चय उखड़ जाता है, और छोटी छोटी नवैयों छोटे छोटे पत्तों और तिनकों का सहारा ले लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है? सागर डूबता नहीं है और वो किनारे पर लग जाता है, तो डूबने वाले डूब गए तो घाटा हो गया ना। इसलिए वो अंत समय नहीं है, वो तो एक परीक्षा है माला की नंबर बनाने के लिए।
वो करंट जब रहता है वो एक परीक्षा है।
हाँ जी, वो माया जो है विकराल रूप धारण करती है तो ये साबित करती है ये तो बहुत नीचे है, ये भगवान नहीं हो सकता, और तुम्हारे विश्वास को निश्चय को माया हिलाए देती है। तो जो बहुत ज्यादा सहयोगी है वो भी टूट पड़ते हैं, जगन्नाथ को टूटी हुई भुजाएं दिखाई जाती है।
आपने एक कैसेट में कहा है, हम जब बेसिक लिया तो जो परमात्मा के बारे में जानते थे क्या? नहीं, जब इसका एडवांस लिया तो एडवांस के बारे में भी नहीं जानते थे।
इसकी जो जब लिया तब नहीं जानते थे
लेने के पहले।
हाँ,
इसलिए जब जानते जब लेने के बाद फिर बाबा के बारे में पूछ करके प्रश्न क्यों पूछते, कोई भी प्रश्न पूछा है तो ज्ञान के बारे में नहीं पूछा।
ये तो कोई बात नहीं हुई, बाबा तो कहते हैं यहाँ शूटिंग हो रही है, जो भी आत्मा जिस समय आती है सतो प्रधान स्टेज में आती है, जब सतो प्रधान स्टेज में आती है तो सरेंडर बुद्धि हो जाती है ढंग से, और धीरे धीरे फिर दूसरों का संग लगना शुरू होता है, तो दूसरों की बात सुनते संग का रंग लगता है, अवस्था नीचे गिरती है, जब ज्यादा अवस्था नीचे गिर जाती है तो प्रश्न ढेर सारे पैदा होते हैं, वो ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं, इसका मतलब कन्वर्शन हुआ है। जो सात्विक स्टेज शुरुआत में थी, एडवांस कोर्स लेते समय एडवांस भट्टी करते समय वो स्टेज अभी, वो उमंग उत्साह की स्टेज अभी नहीं रही, प्रश्न चित्त होने लगे, प्रसन्न चित्त वो स्टेज खलास होने लगे, ये तो होता ही है, इसमें नई बात क्या है? जो शूटिंग है वो ऊपर से नीचे की ओर उतरती है ना।
ठीक है, फिर आगे जो
विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 5,000 साल लगते हैं, तो चारों युगों की शूटिंग तो होगी ना गिरती कला की, चलती कला एक सेकंड में, तेरे बाने सर्व का भला।
नहीं बाबा, आगे पॉइंट है।
हाँ,
इसलिए ज्ञान के बारे में नहीं पूछना है, अपने ज्ञान को अपनाने के लिए जीवन में धारण करने के लिए जो भी कठिनाई आती है या कंफ्यूज आते हैं वो बाबा से पूछ सकते हैं।
नहीं, जो भी प्रश्न क्रिएट होते हैं अंदर दूसरों के संग के रंग से ही, उन प्रश्नों का समाधान कर देना ज्यादा अच्छा है, उससे अपना भी कल्याण होगा और इस तरह के दूसरों के अंदर अगर प्रश्न पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रभावित हुए लेकिन हमारे जैसी प्रभावित होने वाली प्रजा और भी तो बने होंगे, तो उन सबका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो वो सब उस प्रश्न को लेकर के डूबते हो उछलते रहेंगे, तो अकल्याण बहुतों का होगा, तो हम कल्याण करने के निमित्त बने हैं, कल्याण करने के, अपना भी कल्याण होता है दूसरों का भी कल्याण होता है, अगर उस प्रश्न को इस देवान में आकर के हमने छुपा लिया कि हम तो बेधर्मी साबित हो जाएंगे, हम तो किसी के प्रजा साबित हो जाएंगे, और हमने उसको बाहर नहीं निकाला, तो वो अंदर अंदर बढ़ता रहेगा या खत्म हो जाएगा? और अंदर अंदर बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, और कोई प्रश्न पूछा जाता है अपोजिशन करने के लिए। इस मुरली में तो ऐसे कहा, उस मुरली में वैसे कहा, इसका क्या जवाब? दोगला हो ना, तभी तो दो दो बातें बोलते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव रूप से समाधान मिल सकता है। ऐसे तो बेसिक नॉलेज में भी होता था, बेसिक नॉलेज में भी एक मुरली में बोला ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, दूसरी मुरली में बोला ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है। तो जो नेगेटिव होकर के सुनेंगे उनको तो संशय पैदा हो जाता है, ये क्या बात हो गई? दो दो बातें, डायरेक्ट दो दो बातें बोलता है भगवान। धैर्य उखड़ जाता है। बाबा गीत गावा के सुनाते रहते हैं मुरली में, धीरज धर्म हुआ धीरज धर्म, तेरे सुख के दिन आवेंगे।
प्रश्न तो ज्ञान के है ना बाबा, ज्ञान के ही तो प्रश्न पूछते हैं।
ज्ञान के प्रश्न तो पूछते हैं, लेकिन जो ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं वो उनमें अज्ञानता का भी कहीं से वो भाषणा आ रही है ना, कि अंदर कभी कहीं अज्ञानता है, उस ज्ञान का समाधान तो नहीं है ना, तभी तो पूछते हैं। बाबा तो नहीं पूछेंगे तो भी देंगे सारा ज्ञान। ये कैटेगरी अलग अलग होती है, कोई बच्चों के अंदर कोई प्रश्न नहीं आते, दूसरे प्रश्न उनके अंदर क्रिएट करें तो भी क्रिएट नहीं होते, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहते तुम ही पूछो, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है प्रश्न। ऐसे भी है, तिरसठ जन्मों का हिसाब किताब अभी संकल्पों के रूप में सामने आ रहा है। अगर संकल्प कहीं भी विरोधाभासी है तो तिरसठ जन्मों में कहीं विरोध किया होगा तो रील में आ रहे हैं, वहां कहीं भी विरोध नहीं हुआ है तिरसठ जन्मों में, तो यहां विरोध पैदा ही नहीं, कोई क्रिएट करना चाहे तो भी क्रिएट नहीं होगा। वो कहते हैं हमको ऐसी बातें मत सुनाओ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई काम दे करके सुने ऐसे है। हाँ बिल्कुल, बात सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और पार्टियां बन गई, कितने विष्णु भगवान निकल पड़े, जितने भी विष्णु भगवान निकले हैं उन्होंने प्रश्न क्रिएट किए हैं ना, तो जिनकी बुद्धि में प्रश्न क्रिएट किए उन प्रश्नों का समाधान उन्होंने अपने तरीके से दे दिया। क्या उन्होंने आकर के सामने सन्मुख आकर के पूछा कि ये बात ऐसे है, इसका असली जवाब क्या है? बस वही उनको सहमति दे दी, हाँ बिल्कुल सही बात, ऐसे ही होगा।
मंदोदूर और दूसरा भाई आया था, वो कहा दशरथ भाई ने कह रहे हैं बाबा के ऊपर बहुत केस है, हम सब वो भाई भी कोशिश कर रहे मिटाने के लिए, बोला जो मिटाने के लिए तो ऐसा लेट रेट में लेके आओ, बैठ के बातचीत करेंगे, करके दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, कहा मैंने। और वो दो भाई आया और हम भी सभी भाई बैठे थे, बैठ के वो उन्होंने अपने तरीके से बताया थोड़ा पॉइंट से, हमारे घर में अलग बैठे थे। और हम सबने पूछा जो जो भी मुरली का पॉइंट है, दूसरा माँ बाप है बोलने के लिए, मुरली का पॉइंट क्या है वो बताओ, तो वो बता नहीं पाया, जो भी एडवांस में जो पॉइंट दिया है वही पॉइंट बार बार बोल रहे हैं। अहमदाबाद में सम्राट स्वामीनारायण मंदिर है,
स्वामीनारायण मंदिर होने से और विष्णु से क्या मतलब?
अरे हाँ, इसलिए हम सब खास करके पूछा,
तो 76 का बाद 56 को लगाया।
56 कैसे हो जाएगी? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए।
तो हमने बता
तो 5000 वर्ष में से 10 वर्ष कम किए जाएंगे तो पीछे जाएगा कि आगे जाएगा?
हाँ, हम बोला बीकेएसपी 76 के लिए डिक्लेरेशन दिया है बाबा ने चित्र में 76 के लिए बताया है, 56 के लिए कुछ नहीं बताया। तो ऐसा दो तीन जो पॉइंट्स निकला, दो तीन पॉइंट्स में हम लोगों ने सब भाई मिलकर के क्रॉस किया, तो वो एक घंटा बात करके चले गए,
चला गया, न इधर का रहा न उधर का रहा।
और फिर भी वो भाई को बुला के हम समझाने की कोशिश की, मनभद्र भाई, वो माना नहीं। वो फिर दोबारा आया, हम लोग बोला मुरली से हटकर, जो वो बोलता है मुरली से आगे जाओ, और मुरली से हटने का हटकर, और
न वो चित्रों को मानते, न वो मुरली को मानते, न वो अव्यक्तवाणी को मानते।
मुरलियों से जो ध्यान है उससे लागू होने का बात रहे तो बताओ।
मुरली हमारी लाठी है।
मुरलियों से क्रॉस करने का, मुरली से हटने का ज्ञान हमको नहीं चाहिए।
मैं भी कोई कितना भी पढ़ा लिखा बन जाए, ABCD के ज्ञान को छोड़ देगा क्या? जो बेसिक नॉलेज में ABCD पढ़ी है, वो उस ज्ञान को छोड़ने के बाद ऊपर का ज्ञान चलेगा क्या? चल ही नहीं सकता। मुरली तो हमारा फाउंडेशन है। इसीलिए फिर झूठे साबित हो जाते हैं। जब निकली थी विष्णु पार्टी पहले पहले तो कहते 6 महीने के अंदर माला बना के दिखाएंगे। खैर अभी 6 महीने की जगह कितने साल हो गए?
7-8।
6 साल से भी ऊपर हो गए।
वो सीडी भी दिया था।
हाँ जी,
उसमें भी वही समझाता था, ये आत्मा सबसे हाईएस्ट आत्मा है, फर्स्ट नंबर की आत्मा, उनसे आत्मा से और 8 निकलेंगी, 8 से 8.25 निकलेंगी। तो हम पूछा आत्मा कोई क्रिएट होता है क्या? आत्मा तो अविनाशी है, ऐसा बोलने से आत्मा कैसा उत्पन्न होता है हम बताते हैं, ऐसा बोलते
आत्मा उत्पन्न होता है,
क्रिएट होता है।
तो क्या बताया?
नहीं बता रहा। आप चुपचाप जैसा बेसिक कोर्स लिया, एडवांस कोर्स लिया, ऐसा हमारा भी 7 दिन का कोर्स पूरा ले लो।
आकर के सुनिए, आइए, पैसे आपके पास में हो तो हम दिलवा देंगे, खाने के भी जाने के भी, साथ में खाना भी बनवा देंगे। उनकी दलील ये है कि बाबा ने कहा हम तो अपने तन मन धन से अपने लिए विश्व की बादशाही स्थापन करते हैं, हमें किसी के पैसे की दरकार नहीं। तो ये तो सब दूसरों का पैसा है जिससे ये सारा काम चल रहा है। हमारा तो जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वास्तव में वो तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा है, वकालत का।
शंकर ने कामदेव को भस्म किया।
हाँ जी,
एक तरफ।
हाँ जी,
एक तरफ ये पॉइंट है। और दूसरी तरफ जितने भी रुद्रमाला के आत्माएं हैं, पुरुष चोदा वाले रुद्रमाला के आत्माएं हैं, वे सब दुर्योधन दुशासन वाले हैं। मना पुरुष चोला वाले जो हम हैं वो दुर्योधन दुशासन वाले हैं, वृत्ति वाले हैं। इस दुर्योधन दुशासन वाली वृत्ति से बाहर आने के लिए, देहाभिमान के विष से बाहर आने के लिए क्या हम भी भस्म कर सकते हैं काम विकार को?
करते हैं, लेकिन कैसे? अनेकों के संग रंग में आके या एक के संग रंग में आके? एक को फॉलो करेंगे तो होगा या अनेकों को फॉलो करेंगे तो होगा? मनमत पर चलेंगे तो होगा या मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो होगा या एक श्रीमत पर चलेंगे तो होगा?
बाबा जब आते हैं तो भाइयों के अलग और बहनों के अलग समय देने से पर्सनल बाबा से बात करने के लिए भाइयों के अलग समय, बहनों के अलग समय देने से अच्छा,
अलग समय देने से अच्छा होगा।
बहने मिल के रहता है, माता
या कन्या
भाइयों को बैठने नहीं देती।
अच्छा, पर्सनल मुलाकात में बहने मौका नहीं देती भाइयों को? कोई क्लास नहीं हुआ माता और कन्याओं का?
पर्सनल बातों के लिए।
देखा गया है, देखा गया भाइयों के मुकाबले माताएं पहले जल्दी आ जाती है और ज्यादा तादाद में इकट्ठी हो जाती, इसलिए प्रजातंत्र में उनका वोट ज्यादा हो जाता है। और भाइयों की संख्या कम रहती है, जब क्लास शुरू होता है तब आकर के भाई इकट्ठे होते हैं मौके पर। ऐसे तो पर्सनल कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बाबा का क्लास ऐसा खुला है जिसमें कोई भी प्रश्न कहाँ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। पर्सनल होता है पोता मेल, और पोता मेल कहने की सुनाने की दरकार ही नहीं, तो लिख के दिया जाता है।
बाबा के लिए भी तो नहीं हो सकता, अपनी अपनी आत्मा के लिए तो अलग, अपना हरेक आत्मा में दुनिया है।
मोबाइल है, ईमेल है, न भी हो सकता है तो वो भी हो जाता है, तो कोशिश करो जल्दी मिलेगी। भाई लोगों को लगा रहता है धंधा दोरी, माताओं को घर के सिवाय कोई धंधा दोरी तो है नहीं, इसलिए वो ज्यादा टाइम निकाल लेती है। सारी बातों की शूटिंग होती है, इसलिए भक्ति मार्ग की सारी बातों को उठा उठा करके समझाते हैं ताकि टैली कर सको वहाँ के रिचुअल को, वहाँ की परंपराओं को। भक्ति मार्ग की जो भी परंपराएं हैं उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वास्तव में संगम युग में पड़ता है, तो संगम युग में वास्तव में होता है और वहाँ तो डुप्लीकेट होता है सारा काम। वहाँ अंधश्रद्धा पूर्वक होता है और यहाँ श्रद्धा विश्वास पूर्वक होता है, असली काम होता है। माँ काली के रूप में निकलेंगे तो मैं पने की बलि चढ़ जाएगी।
अमरनाथ में जो रिजल्ट से ही हिंदू का जो शिवलिंग बनता है ना, वो अभी नहीं बनता है, उसको तो एक प्रकट होना चाहिए क्योंकि दर्शन करने वालों को निराश, दर्शन करने वालों ने निराश नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा?
बाबा ने तो मुरली में कहा कि बाबा जब अमरनाथ की यात्रा में गए तो उन्होंने तो ये देखा कि एक ब्राह्मण छोकरा था, वो जाके शिवलिंग बनाता था, अपने आप थोड़ा ही बनता था। कोई ब्राह्मण छोकरा था जो सवेरे सवेरे मंदिर में घुस करके वहां बर्फ का लिंग बना देता था, वो शाम तक बना रहता था, उसकी लोग पूजा करते रहते थे। अभी बाद में ये भी सुना गया कि पहाड़ के अंदर कोई मशीन बना के रख दी गई, उस मशीन में से बर्फ निकल निकल के ऊपर उसके ऊपर धीरे धीरे गिरती रहती है। अभी तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, ओजोन किरण फट रही है ना, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी कि शिवलिंग बनने की बात ही नहीं रहेगी।
लेकिन
ये किसने कहा पूतना विजय माला से निकलती है?
तो
ये कौन सी मुरली में कहा? तो वहाँ तो निकलने की बात ही नहीं, रुद्रमाला के अंदर ही कोई ऐसी सुपनखाएं पूतनाएं हैं जो राक्षसी रूप धारण करती है और ग्लानी करती है भगवान की।
लेकिन ये भी पता है और शरीर जो है होते हुए भी,
हाँ तो क्या हुआ है? सुद्रमापुर का हाँ। अरे जब पुरुष संस्कार है, स्वभाव संस्कार सारा पुरुष का है, तो जो जब वो पुरुष चोला धारण करेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा? जब हार्मोन से चेंज होंगे और वो पुरुष का रूप धारण कर लेंगे तो कौन सा रूप हो जाएगा? अभी तो जो भी भाई भाई के रूप में है वो सब दुर्योधन दुशासन के रूप में, कंचन माता है जो है उनमें कोई कोई सुपर्णखा पुतना है पहले से ही, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो सुपर्णखा पुतना नहीं है, जिनमें लज्जा रहती है काम विकार के लिए, वो जब स्त्री चोले से पुरुष चोला धारण कर ले हार्मोन चेंज होने के बाद, तो वो पुरुष बन जाएंगे ना।
क्लियर था,
कोई ने डाउट उठाया तो प्रभावित हो गए।
नहीं
क्लियर करने
हाँ जी, ये तो सारे पुरुष हैं, फिर तीन ग्रुप कैसे
हैं? पार्टी में पुरुष ही पुरुष हैं, स्त्रियां कोई नहीं है।
रुद्रमाला है ना,
जो एडवांस पार्टी है उस एडवांस पार्टी में सब पुरुष ही पुरुष हैं, स्त्रियां कोई नहीं है, है?
रुद्रमाला
हाँ, तीन ग्रुप हैं और तीनों ग्रुपों में, तीनों ग्रुप्स में स्त्री चोले वाले भी हैं, पुरुष चोले वाले भी हैं, सारी एडवांस पार्टी में स्त्री पुरुष साथ साथ है। इंस्पिरेटिंग पार्टी माने जो प्रवेश करके पार्ट बजा रही है आत्मा, वो प्रवेश करने वालों में कोई स्त्री चोले वाले हैं सूक्ष्म शरीर से, कोई पुरुष चोले वाले हैं सूक्ष्म शरीर से, वो इंस्पिरेट करते हैं बुद्धि को, बुद्धि को घुमाए देते हैं। कोई में दूसरे धर्म की आत्मा प्रवेश करती है तो बुद्धि को घुमा देती है। पहले वो बड़ी महिमा करते हैं, भगवान आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, फिर वो आत्मा प्रवेश करती है, बुद्धि घुमा देती है, अंदर ऐसे ही चले गए थे वहां देखने के लिए कि वहां क्या होता है, कोई नहीं भगवान भगवान आया हुआ है, शैतान है, तो किसने बुद्धि घुमा दी? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसने बुद्धि घुमा दी, उसके संस्कार ऐसे हैं, वो ज्ञान को नहीं समझ सकती गहराई से। इंस्पिरेटिंग पार्टी उसमें भी स्त्री चोले और पुरुष चोले हैं। प्लानिंग पार्टी जो उसमें मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं साकार शरीर से, जिन साकार शरीरों में वो आत्मा प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाती भी है, लेकिन थोड़े समय तक घुमाएंगी, आखिरी प्रवेश करने वालों को हार खानी पड़ेगी। और तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल पार्टी वो अभी निकली नहीं है, लेकिन प्योरिटी की धारणा में प्रैक्टिकल है, दिव्य गुणों की धारणा में प्रैक्टिकल पार्ट अभी भी बजा रही है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान मिल जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा, प्रत्यक्षता हो जाएगी। तीनों ही पार्टियों में स्त्री और पुरुष हैं। अष्टदेव है, उनके नंबर नहीं बनेंगे,
बनेंगे
जब उनके भी नंबर बनेंगे तो थोड़ा टाइम के लिए उनको भी अनिश्चय आना जरूरी है या नहीं है? है? नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे, कैसे पता चलेगा ये अव्वल नंबर है, ये द्वितीय नंबर है, ये तीसरा नंबर? वाणी में तो बोला हुआ है, एक सेकंड की भी देरी की तो मड़का नीचे उतर जाएगा, दो सेकंड की देरी हुई तो मड़का और नीचे उतरेगा, तुरंत फैसला करना पड़े क्या राय थे क्या रंग। फाइनल परीक्षा है ही, नष्टो हुआ स्मृति लब्धा, प्रश्न भी बता दिया, टाइम भी बता दिया, एक सेकंड की परीक्षा होगी, सेकंड सेकंड में दाने प्रत्यक्ष होते जाएंगे। कोई तो फैसला करने में सब वर्षों लगाए देते हैं, आज के हजामती दल है सारी जिंदगी मुकदमा चलाते रहते हैं, फैसला कर ही नहीं पाते, मुकदमा पेश करने वाला मर जाता है फैसला नहीं हो पाता है, कहेंगे कि निर्णय शक्ति की कमी है, माने आत्मा कमजोर है। यहां भी बाबा बताते हैं जो पावरफुल बच्चे होंगे उनकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत तीखी होगी, परख शक्ति और निर्णय शक्ति के आधार पर ही नंबर बनेंगे। और बेसिक में जो सरेंडर होते हैं
वो एडवांस फैक्टर से आ नहीं पाते,
जो सरेंडर होने वाले नहीं आए एडवांस में,
अंदर वाले रह जाए बाहर वाले रह जाए ऐसा बोल रहे
हैं, अंदर वाले रह जाएंगे नहीं, अंदर वाले सब तो नहीं रह गए, एक बात बताई कि ये भी होगा कि अंदर वाले बहुत से रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि सारे ही अंदर वाले रहे सरेंडर आए ही नहीं, या तो बहुत सी ऐसी कन्या है जो वहां भी सरेंडर हो गई और सरेंडर होने के बाद यहां भी आ गई।
बाबा वो भाई का कहना है उनका तो जल्दी से आ नहीं पाते, अभी सरेंडर होके वहां रह गया, क्योंकि यहाँ जल्दी से एडवांस जल्दी आकर के
नहीं आने वाले आ जाते
आ जाते हैं, अभी जो आ नहीं सकता है ज्ञान अभी नहीं समझ सकता वो लास्ट में आ सकता है, इसका कारण क्या है?
वो जो वहाँ रह जाता है बाबा वो बुद्धि से निर्णय नहीं कर पाते,
उन्होंने अपना गुरु ही ऐसा देहधारियों को बनाया हुआ है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, कोई कितना भी अच्छा समझाने वाला हो ब्रह्मा ही डायरेक्ट क्यों उतर आए, भगवान ही क्यों उतर आए उनको उनको समझाने के लिए, वो मानेंगे नहीं। जैसे क्राइस्ट के पीछे उतरने वाली आत्मा है, जब तक क्राइस्ट ज्ञान में नहीं निकलेगा तब तक वो आत्मा ज्ञान को नहीं मानेगी, ऐसे ही क्राइस्ट का जो आधार मूर्त है यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में वो जब तक ज्ञान में नहीं निकलेगा, मान लो तीसरा नारायण है सातवां नारायण है, वो जब तक उसकी बुद्धि में एडवांस ज्ञान पूरा नहीं बैठेगा तब तक उसके फॉलोअर्स मान नहीं सकते। ये 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं आत्मा में, बनी बनाई बन रही है, अब कछु बने नहीं रहा है, बना बनाया खेल है।
जो भी धर्मस्थापक आत्माएं हैं उनका अस्तित्व संगम युग में क्या है?
संगम युग में वो भी अपने टाइम पर आकर के बाप को पहचानेंगे, नमन करेंगे और नमन करके वापस चले जाएंगे।
ये तो पहचान सकते हैं जो बीज रूप है एडवांस में और आधार रूप है वहाँ डीके में,
हाँ वो लोग पहचानेंगे कि हमारे पूर्वज कौन कौन है, उनको ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी, इब्राहिम है जैसे,
इसीलिए वो लोग एडवांस में रहेगा या डीके में?
वो सारी दुनिया को एडवांस बनना है, बाप को तो सारी दुनिया को पहचानना है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर सिर्फ कहे सिर्फ कि फादर है और मिले नहीं तो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब पहचानेंगे। एडम को कौन सा धर्म वाला नहीं मानता? आदम और एडम को कौन से धर्म वाले नहीं मानते? सभी धर्म वाले मानते, नास्तिकों को भी मानना पड़ेगा अंत में, क्योंकि नास्तिक कोई शुरुआत में नास्तिक थोड़े ही होते हैं जब किसी धर्म निकलता है,
क्योंकि वो पूरी तरीके से नहीं मानता।
नहीं, जो क्रिश्चियन धर्म के दो छेड़े बने हैं वो बाद में बने हैं या पहले से ही है? बाद में बने, पहले तो सारे क्रिश्चियन नास्तिक ही थे, क्राइस्ट को गिरजाघर को मानने वाले थे, बाबा कुछ न कुछ अव्यक्तवाणी में इशारे देते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा की जो अव्यक्तवाणी है वो अव्यक्तवाणी देवता की वाणी है या कोई फरिश्तों की वाणी है या धर्म पिताओं की वाणी है या कोई भगवान की वाणी है? देवता की वाणी है ना, तो वो देवताओं को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो सूर्यवंश में जो देव आत्माएं हैं उनको सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है। तो उस वाणी में ऐसे ऐसे वाक्य आ रहे हैं कि जैसे इन्होंने दीदी दादियों का आदि में श्रृंगार किया था, आदि में श्रृंगार किया था तो अंत में भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के निमित्त बनेंगे। फिर कहीं बोल दिया तुम बच्चे बाप दादा के बगैर नहीं रह सकते, बाप दादा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते।
तो आप उन लोगों को किस तरीके से श्रृंगार करते
है? ज्ञान रत्नों से, अभी उनके पास उनके अंदर एडवांस नॉलेज कहाँ है?
वो तो नहीं है, हम किस तरीके से लेटर करेस्पॉन्डेंस करना या
है
दादी दीदियों के लिए हम लेटर करेस्पॉन्डेंस करना या किस तरीके से करना
है क्या उनको समझाने के लिए समझाने के लिए?
कोई लिटरेचर से ज्ञान नहीं समझता, लेटर लिखना, ईमेल देना, कैसेट भेज देना, वीसीडी भेज देना, ये सारा लिटरेचर है। किसी को सिर्फ लिटरेचर देंगे और सन्मुख बैठ करके नहीं सुना देंगे तो वो उसे फेंक देगा। लिटरेचर से कभी ज्ञान नहीं सुनाया जाता ईश्वरीय, ये तो भक्ति मार्ग में चलता है लिटरेचर। ज्ञान मार्ग में तो सन्मुख बैठ करके सुनाना पड़ता है, तब बुद्धि में पूरा बैठता है।
पवित्रता का
पलड़ा तो पलड़ा तो तभी भारी होगा जब प्रैक्टिकल करके दिखे। प्रैक्टिकल में अगर फेल होते रहे तो सन्यासियों का पलड़ा भारी रहेगा या गृहस्थियों का पलड़ा भारी रहेगा? तो सन्यासियों का तब तक पलड़ा भारी रहेगा। उसने कोई ऐसा राज की बात सीख ली होगी जो औरों ने नहीं सीख पाई, जो राजयोग की गहनता है वो उसने समझी होगी, दूसरों ने नहीं समझी होगी।
बाबा ने कहा है कि तीन धर्मों को एक समय सही स्थापित किया जाता है।
ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, ब्राह्मण जब पक्के बनते हैं तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं उनको एक तरफ किया जाता है नई दुनिया में तो वो देवता कहे जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो सब क्षत्रिय। तीन धर्म स्थापन हो गए, ब्राह्मण धर्म की राजा ही नहीं होती। क्या ब्राह्मणों को सेवादारी बनकर के रहना है, यहाँ किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं चलाना है। क्षत्रिय धर्म अलग से थोड़ा ही होता है, देवता और क्षत्रिय दोनों मिलकर के एक ही धर्म बनता है, देवी देवता सनातन धर्म। सब क्षत्रिय नहीं कन्वर्ट होते, जो हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, माने ज्ञान को पूरी गहराई से नहीं उठाया होता है जिन क्षत्रियों ने, वो जाकर के सिख बन जाते हैं।
शिव मंदिर का मतलब क्या है?
शिव मंदिर का मतलब शिव मंत्र बना जादूगरी का देना, शिव मंत्र होगा आगे चल करके, जो बाबा ने बोला ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे, जिसको देखेंगे वो ही पलट जाएगा, मुख से सुनाने की भी दरकार नहीं रहेगी। जैसे नेहरू जी के सामने कोई आते थे तो उसको कोई कितना भी विरोध करने वाले हो पीछे से, लेकिन जब सामने आते थे तो चेंज हो जाते थे। ये कौन सी शक्ति है? ये ऊपर से आने वाली नई आत्मा की विशेष शक्ति है, आत्मा का फोर्स है।
लेकिन बाबा को कोई भी मंत्र कर सकते हैं क्या? अगर क्या
करके देखो,
अगर हो सकते हो सारा ये करके पीछे
बाबा के ऊपर करके देखो, ब्रह्म कुमारियां तो करवा के देख रही है, बाबा के ऊपर भी करवा रही है, बाबा के बच्चे के ऊपर भी करवा रही है, तांत्रिक मंत्रिक। हो गया टाइम।
तो और एक बात है,
एक बात और है,
नहीं तो पूछने के लिए थोड़ा
संकोच आ रहा है।
संकोच नहीं है,
हाँ?
वो तो क्रास क्वेश्चन है,
हाँ?
वो तो क्रास हो, क्रास रहेगा ऐसा लगता है,
ऐसा लगता है वो क्रास क्वेश्चन है।
हाँ,
क्वेश्चन तो सारे क्रास करने वाले ही होते हैं।
भावना के आधार होता है,
भावना
के आधार होता है। तो गलत सही समझे तो पूछने के लिए।
अरे बाबा गलत समझता भी है। तुम्हारा बाबा गलत समझने वाला भी है,
नहीं है।
समझू कम है। बाबा के मुकाबले तुम्हारी अगर ज्यादा तीखी है ना? चलो है। अरे इतनी देर से और क्या चल रहा है?
बच्चों से परीक्षा लेने के लिए,
हाँ?
बाबा कभी ना कभी उल्टा राय देते हैं क्या?
बाबा उल्टा राय देते हैं
परीक्षा लेने के लिए?
नहीं, बाबा उल्टा राय क्यों देंगे? है? किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने है क्या?
बाबा ऐसा देगा तो दो
है,
दो बुक हो जाए।
है? हाँ जी
भाई, एक बात आया।
तो इसका मतलब कोई बात है जो बाबा ने उल्टी राय दी है किसी को? तुम्हारी बुद्धि में है जरूर कोई बात?
नहीं बाबा।
क्लियर करो।
नहीं, कोई ऐसा एक बात आया।
एक बात आया, परीक्षा की बात करो।
परीक्षा लेने के लिए बाबा उल्टा राय देंगे,
ये किसने कहा? ये मुरली में कहा, अव्यक्त वाणी में कहा, कहीं क्लैरिफिकेशन में कहा, कहाँ कहा गया है? या किसी मनुष्य ने या तुम्हारी मनमत ने कहा? पता नहीं, मैंने कोई की भी बात अंदर धारण कर लेते हैं।
दक्षिण भारत में मुरुडेश्वर के तीर्थ क्षेत्र है।
मुरुडेश्वर,
यही रहा मैं गलत।
मुरडा माने क्या? मुड़कानमूल नाम सुना है, एक गांव का नाम है मुड़कानमूल।
मुरडे
माने क्या? हाँ नाम है, नाम कोई काम के आधार पर नाम पड़ता है ना, उस नाम का कोई अर्थ होगा ना।
शंकर का बड़ा मूर्ति बना है बाबा, उसमें जो डमरू पकड़ा है ना शंकर जी ने, वो हाथ से टूट गया है।
अच्छा,
कोई सब हाथ भी खड़े है, वो हाथ एक ही टूट गया, वो कैसे टूट गया?
जो डमरू बजाते बजाते एक हाथ टूट गया,
इससे
टूट गया कि मुड़ गया? तो मुड़ेश्वर हो गया है।
उसके ऊपर जो बिजली पड़ गया,
हाँ,
ये आती है उसके ऊपर
गिरती है, इंद्रदेवता का प्रकोप हो गया उस हाथ के ऊपर। अच्छा, तो डमरू वाला हाथ गिर गया। अब डमरू वाला हाथ कौन सा होता है मालूम है? डमरू जो होता है ना, वो दोनों तरफ बजता है, इधर भी गड़क करेगा, दाई ओर भी, बाई ओर भी गड़क करेगा, गड़क 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 गड़क, माने दोनों तरफ बजता है, दोनों तरफ आवाज करता है। वो वास्तव में है कार्तिकेय, वो आत्मा है जो शिव को प्रत्यक्ष भी करती है कभी, और फिर कभी छह धर्मों के प्रभाव में आकर के छह मुख से बात करती है, सीधी बात भी करती है, फिर उल्टी बात भी करती है, कभी भक्ति मार्ग वालों के प्रभाव में आती है, कभी ज्ञान मार्ग वालों के प्रभाव में आ जाती है।
जो मुखिया को भोग कहे जाता है ना,
लीला करते हैं, सो पोप पोप लीला जानते हैं, जो ढोल होता है ना तो उसमें पोल भरा हुआ होता है, अंदर कुछ नहीं होता, खाली है, तो अंदर से बिल्कुल खाली है लेकिन बाहर से दिखावा बहुत करते हैं, उसको कहा जाता है पोप लीला। अंदर से प्रूफ सहित ज्ञान की कोई बातें नहीं है, सब अज्ञानता भरी हुई है, अंधश्रद्धा भरी हुई है, अंधश्रद्धा की बातें सुनाते हैं, सारा अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ है और उससे भी ज्यादा अज्ञान उसमें कुरान में भरा हुआ है, ज्ञान की कोई बातें नहीं, आर्डर ही आर्डर, आर्डर ही आर्डर, जैसे कोई मिलिट्री गवर्नमेंट होती है। ज्ञान का जो सार है वो बिल्कुल नहीं होता उन बातों, उनको कहते हैं पोप, उन्हीं की पता को वो विकेज अपनाते हैं, बाहर से सफेद लगा अलग साड़ियां पहने हुए हैं, सफेद का भग मकान बने हुए हैं, अभी अंदर से पोल पट्टी क्या है वो सारी निकलने वाली, क्योंकि वो है किसके फॉलोअर, कृष्ण के, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, इसलिए क्राइस्ट के जो डायनेस्टी में जो भी आने वाले पोप हैं वो क्या पोप लीला कर रहे हैं उनकी जिंदगी के पीछे पड़ा जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, वो पवित्रता को स्थापन कर रहे हैं कि वैश्यालय बना रहे हैं वो बाद में पता चलेगा। उसको कहते हैं पोप लीला, हिंदी में ये शब्द प्रसिद्ध है।
हेड भी तो पोप होता है,
है?
उनका हेड भी पोप होता है,
हाँ उनका हेड जो होता है वो पोप होता है, क्या लगता है?